ओम शांति। बत्ती में आए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका आपके अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है। मंचा सिंह हमारे सभी प्रेरक पुंजों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेष जो दिन है, आप सबको पता हो, जैसे श्रावण मास शुरू हुआ है। भक्ति में श्रावण मास का बहुत महत्व है। लोग शिव की आराधना करते हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम शिव के बच्चे, शिव के घर मधुवन में तपस्या के लिए आए हुए हैं। तो सभी एक बार अपना स्वागत तालियों के द्वारा करें। भक्ति में भी वैसे बोलते हैं ना, तपस्या का बहुत महत्व है। बड़े बड़े जिनकी कोई मनोकामना होती थी तो तपस्या करते थे और भगवान उनकी मनोकामना पूरी कर देते थे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम मधुवन में विशेष सावन मास में हमें ऐसी भट्टी करने का मौका मिला है। तो स्वागत सत्र में, आज के स्वागत सत्र की शुरुआत हम एक गीत के द्वारा करेंगे। हाँ, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे मधुर वाणी ग्रुप से कि वो गीत के द्वारा हम सब भाई बहनों का स्वागत करें। मधुर वाणी ग्रुप आने दो। आप सब लोग मधुर वाणी ग्रुप को देखते हैं। हाँ, हमारे आदरणीय सतीश भाई जी, इतने सारे बाबा के गीत, नितिन भाई जी, हाँ आप सब परिचित हैं नितिन भाई जी से, बाबा के अनमोल रतन, और हमारे आदरणीय गोविंद भाई जी, हाँ बहुत बाबा के अनन्य बच्चे। आप मीडिया में इतनी सेवा करते हैं, साथ साथ बाबा के घर में भट्टी वगैरह में भी बहुत अपनी अनमोल सेवाएं देते हैं। तो आज हम सुनेंगे मधुर वाणी ग्रुप।
ओम शांति। निस्संदेह मधुबन में भट्टी का अवसर मिलना बहुत बड़े पुण्य का फल है, और उसमें भी ज्ञान सरोवर में, हरी भरी वादियों में प्यारा ज्ञान सरोवर है, और ज्ञान सरोवर में भट्टी का मौका मिला मनोहर है, और आप सभी ने तब का सुंदर मौका ले लिया, अवसर ले लिया, तो खुशियों में झूले में झूलता है जिया, और दिल कहता है बाबा आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत।
वादियों में प्यारा ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर में भक्ति का मौका मिला मनोहर है। आप सभी ने तप का सुंदर अवसर ले लिया, आप सभी ने तप का सुंदर अवसर ले लिया, खुशियों के झूले में झूलता है जिया, दिल कहे शुक्रिया पापा तेरा शुक्रिया। कमल है खिलता, ज्ञान सरोवर में मन का प्यारा कमल है खिलता, यहाँ पे निर्मल निर्मला दीदी का प्यार मिलता, यहाँ पे निर्मल निर्मला प्यार मिलता, जो भी आया बाबा ने आंचल में समा लिया। आप सभी ने सबका सुंदर अवसर ले लिया, खुशियों के झूले में झूलता है जिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। ज्ञान का सागर लहराकर ज्ञान सरोवर बुला रहा, ज्ञान का सागर लहराकर ज्ञान सरोवर बुला रहा। महातीर्थ पर सारा भारत जैसे आकर नहारा, महातीर्थ पर सारा भारत जैसे आकर नहारा। जो भी आया भाग्य का तारा है चमका लिया। आप सभी ने सबका सुंदर अवसर ले लिया, खुशियों के झूले में झूलता है जिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। अंतर्मुख हो आत्मा में शक्तियां भर ले, अंतर्मुख हो आत्मा में शक्तियां भर ले। ज्वालामुखी भट्टी से सारे पाप भस्म कर ले, ज्वालामुखी भट्टी से सारे पाप भस्म कर ले। 14 वर्ष की बट्टी पर 4 दिन का लक्ष्य दिया। आप सभी ने सबका सुंदर अवसर ले लिया, खुशियों के झूले में झूलता है जिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, खुशियों के झूले में झूलता है जिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय सतीश भाई जी मधुरवाणी ग्रुप को, इतने सुंदर शब्दों से हमारा स्वागत किया। गीत की एक लाइन थी, 14 वर्ष की भट्टी का करे 4 दिन का लक्ष्य, है ना। तो ये हमारे पास अवसर है जो दादियों ने भट्टी की, जो पहले मधुबन में भट्टी होती थी, भट्टी का जो इतना महत्व है उसको हम, बाबा ने जो अवसर दिया है ज्ञान सरोवर की धरनी पे आके हम उसका अनुभव करें। ये ज्ञान सरोवर को शुरू से ही वरदान है, धरती को जो भी यहाँ पे आता है उसको विशेष अनुभूति होती है। और विशेषतर लॉकडाउन के बाद जो यहाँ पे भट्टियां हुई, तो हम सभी का ये अनुभव रहा, जो भी यहाँ पे आए उनको बहुत बहुत अच्छे अनुभव हुए। और जब हम भट्टी को एक लक्ष्य के साथ करते हैं तो बाबा हमारी बहुत मदद करता है। जब हमारे मन में एक क्लियर लक्ष्य हो, एक उद्देश्य हो, तो भट्टी हमारी सफल भी होती है। तो इसी जो भट्टी का लक्ष्य है उसको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच हमारी आदरणीय सुमन दीदी जी हैं। आप सब लोग सुमन दीदी को जानते होंगे, हम सब एक हाथ की ताली से सुमन दीदी का अभिनंदन करेंगे। सुमन दीदी, जो ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम होते हैं आप उनका कोऑर्डिनेशन करते हैं, सारा प्रोग्राम बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना, संचालन करना, सारी व्यवस्था करना, आपकी जो भट्टी है उसका भी जो रूप रेखा प्रारूप एग्जीक्यूशन सारा सुमन दीदी ने किया है। तो हम सब एक बार तालियां बजाकर सुमन दीदी का स्वागत करते हैं। सुमन दीदी, आप सीनियर मेडिटेशन राजयोग टीचर हैं, मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, साथ साथ हमारा जो एजुकेशन विंग है आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ, आप देश विदेश में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाके एज ए सीनियर स्पीकर आपने सेशंस लिए हैं और ज्ञान सरोवर की जो भी व्यवस्था होती है उसमें दीदी के आप मददगार हैं। तो आज आप हमें भट्टी का लक्ष्य बताएंगे।
ओम शांति। मंचासीन परमादरणीय निर्मला दीदी जी, आदरणीय मेहरचंद भाई, आदरणीय अरुणा बहन, संजय भाई, शैलेंद्र भाई और सभा में उपस्थित बाबा के दिल तख्त नशीन होली हंस, भारत के विभिन्न जगहों से ज्ञान सरोवर में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से आपके ही घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। 3 दिन हम यहाँ बैठ करके भट्टी करें, बाबा के चित्र छाया में बैठे, बाबा के दिल में बैठ करके ऐसा अनुभव करें कि इस दुनिया में हम जैसे है ही नहीं, है ना। हम सभी भाई बहने बाबा का हर बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है। तो बाबा ने हमें चुना है इस संसार को परिवर्तन करने के लिए। अगर हम अपने भाग्य का लिस्ट निकाले तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, है ना। तो हम केवल भाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि हर कदम में पद्मों की कमाई करने का जो हमें लक्ष्य बाबा ने दिया है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, हम इतना भाग्यशाली है। 2 दिन पहले हम सभी ने गुरु पूर्णिमा मनाई। तो उस समय गुरुओं को नमन करते हैं, उनको जाकर के पांव छूते हैं, लेकिन हम सभी इतने भाग्यशाली हैं, हमें कौन मिला है, सदगुरु मिला है। सभी गुरुओं का भी गुरु जो सदगुरु है वो हमें सच्चा मार्ग बता रहे हैं, गति सदगति में न केवल मार्ग बता रहे हैं लेकिन उन वहां लेकर के जा रहे हैं, है ना। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा कहते हैं न केवल सदगुरु का संबंध लेकिन बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, बंधु, साजन, सभी संबंधों से बाबा के साथ अनुभव करने की बात है। तो संगम युग का इतना सुहाना समय, इतना सुंदर समय, जो पुरुष को उत्तम बनाने का समय है, ऐसे समय में हम सभी उपस्थित हैं। लेकिन उस संगम युग का भी कौन सा समय बाकी है, संगम युग का भी अंतिम समय में हम सभी उपस्थित हैं। संगम युग के आदि में नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट एंड पर हम पहुंच गए हैं। कितना समय बाकी है, कितना समय बाकी है संगम युग का, बहुत ही कम समय बाकी है। उस कम समय में हमें बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ बनना है और बहुत कुछ करना है इस संसार में, और बहुत आत्माओं को हमें सकाश देना है, बाबा का परिचय देना है, मार्ग बताना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता हमें बनना है। तो ऐसे बनने के लिए हमें अपने आप को भरने की जरूरत है। और हम सभी को इतना सुंदर मौका मिला है ज्ञान सरोवर में तपस्या करने के लिए। यूजुअली भट्टिया शांतिवन में हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में भी भट्टिया शुरू हो गई। और आप सभी आत्माओं को इतना सौभाग्य मिला है ज्ञान सरोवर के इस पुण्य भूमि पर आकर के 3 दिन आप तपस्या कर सक रहे हैं। और आप सभी को बहुत महारथी भाई बहने क्लास देने वाले हैं। सब कुछ तो बहुत अच्छा है, वातावरण अच्छा है, बहुत सुंदर क्लासेस आप सभी को मिलेगा, लेकिन इन 3 दिनों में हमें करना क्या है उसका भी लक्ष्य रख करके जब हम तपस्या करेंगे तो जरूर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब भी हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन कहाँ जाना है अगर पता ही नहीं है, वहाँ ही घूमते रहेंगे, जहाँ तक पहुँचना है वहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हर एक आत्मा जो यहाँ भट्टी में शामिल होने आई है, तो आप सभी इंडिविजुअल लक्ष्य 3 दिन में आपको करना क्या है, क्या अनुभव करना है, क्या भरना है, वो आप इंडिविजुअली लक्ष्य जरूर रखें। लक्ष्य के बिना हमारे अंदर लक्षण हम धारण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूर क्या सोचना है, क्योंकि कोई भी संस्कार आप जरूर यहाँ छोड़ के जाना है। बहुत समय से अगर कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं कोई संस्कार छोड़ने के लिए, उसको भस्म करने के लिए, यहाँ अभी बहुत सुंदर मौका है। क्योंकि संगठन में शक्तिशाली वातावरण में जब बैठ करके तपस्या करते हैं, ज्वालामुखी तपस्या करते हैं, वो संस्कार जरूर भस्म होगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा संस्कार जरूर इन 3 दिनों में भस्म करने का संकल्प जरूर करेंगे। लेकिन ऐसे ज्वालामुखी योग करने के लिए हमें कुछ नियमों का भी पालन करना होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं जहाँ साइलेंस की शक्ति है वहाँ सिद्धियां प्राप्त होगी। दुनिया वालों का साइलेंस की शक्ति है, हमारा साइलेंस की शक्ति है, और साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति पर भारी पड़ता है ना। तो उस साइलेंस की शक्ति को यूज करते हुए बहुत कुछ कमाल करना है। साइलेंस की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए हमें मान जरूर रखना है। अपने ही अंतर्मुखता के कुटिया में जाकर के बैठ करके तपस्या करने की जरूरत है। उस कुटिया में अंतर्मुख होकर के भुकुटी रूपी कुटिया में बैठ करके मौन धारण करके अखंड तपस्या करना बहुत जरूरी है। बहुत समय के बाद आप सभी यहाँ आए हैं, तो लगता है कि वो सभी आए हैं बात करें, लोगों से जाकर के मिले, मधुबन निवासियों से जाकर के मिले, मिले जुले बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलना जुलना तो हम सारे कल्प में करते आए हैं आत्माओं के साथ मिलना। लेकिन अभी संगम युग का समय है परमात्मा के साथ मिलन मनाना, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा सारे कल्प में नहीं मिलेंगे, केवल अभी का समय है जो बाबा आकर के सत्य परिचय देकर के हमारे साथ मिलन मना रहे हैं। तो इसीलिए ये 3 दिन केवल अपने साथ और बाबा के साथ मिलन मनाएंगे, लोगों के साथ आत्माओं के साथ मिलन जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे और उससे ज्यादा नहीं। कम से कम हम व्यवहार में आए, कम से कम हम शब्दों में आए, आवाज में आए, मौन धारण करके हम अपने साथ मिलन मनाएं और बाबा के साथ मिलन मनाएं। ऐसा दिव्य अलौकिक मिलन मनाने के लिए हमें 3M का मौन धारण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है मुख का मौन, क्योंकि जब तक मुख का मौन नहीं होगा तब तक हम अपनी शक्तियों को बचा नहीं सकते हैं, शक्तियों को जमा नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा शक्ति नष्ट होता है अपने शब्दों के द्वारा, बातों से हमें सबसे ज्यादा शक्तियां नष्ट होती है। तो इसीलिए मुख का मौन, जब बड़े बड़े साधना जब करते हैं लोग, मुख का मौन जरूर धारण करते हैं। और बाबा भी पहले ये भी कहते थे कि हफ्ते में एक दिन मौन धारण करो, जब चाहे जब हो सके तब आप मुख का मौन धारण करें तो बहुत अच्छा है। तो आप सभी के लिए सुंदर मौका है, कोई भी कारोबार नहीं है, जॉब में जाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया भोजन आप सभी को मिलेगा। तो इसीलिए सुबह से शाम तक आप सभी का एक ही काम है, वो है ज्ञान योग करना। स्टूडेंट लाइफ है आप सभी, हम सभी का, तो इन 3 दिनों में वो स्टूडेंट लाइफ हम फिर से जिएंगे। केवल हम ज्ञान योग में हम अपना ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल अपने पढ़ाई में ध्यान देते हैं। हम भी आज से अभी से लेकर के जाने तक केवल ज्ञान योग में हम अपना ध्यान देंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, मुख का मौन रखते हुए। और दूसरा M है जिसका हमें मौन रखना है, वो है मन का मौन। क्योंकि कई बार हम मुख का मौन तो रख लेते हैं, फिर भारीपन महसूस होता है। मुख का मौन तो रख लिया, लेकिन करना क्या है, मन को किस में बिजी रखना है, हमें जब मालूम नहीं होता है तो बहुत भारी होता है। कई लोग मुख का मौन रख लेते हैं, लेकिन मुख फेस पर इतना टेंशन नजर आता है जैसे पूरी दुनिया उनके सिर पर आया हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन योग में हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। तो मुख जब हम मौन रखते हैं, और भी वो रूहानी जो मुस्कान है, वो हर्षित मुक्ता है, वो मुख के थ्रू वो दिखाई देना चाहिए। वो भारीपन महसूस नहीं होना चाहिए ना। तो भारीपन क्यों महसूस होता है कि मन में क्या करना है, मन को किस रीति से बिजी रखना है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो इसीलिए मन को भी हम बिजी रखें। इतने सुंदर सुंदर क्लासेस आप सभी को मिलेगा। आप सभी जरूर अपना नोटबुक और पेन लेके आएंगे। स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट लाइफ में नोटबुक और पेन के बिना स्टूडेंट लाइफ नहीं हो सकता। इसीलिए सभी के पास नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए। जो भी सुंदर क्लासेस यहाँ होगा आप नोट डाउन करेंगे, आपकी फ्री टाइम में जो भी पॉइंट्स है उसका मनन चिंतन करेंगे, मन को मनन चिंतन में बिजी रखेंगे। क्योंकि बाबा ने तो बहुत अखुट खजाना दिया हुआ है हम सबको, लेकिन जब तक हम मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान का पॉइंट अपना नहीं हो सकता, हम उसको धारण नहीं कर सकते। इसलिए मनन चिंतन की आदत यहाँ से ही डालने की जरूरत है और मन को उसमें ही बिजी रखना है। और कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, किसी को भी नहीं देखना है। बोला है मौन रखना है, ये देखो ये बात कर रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, वहां जा, किसी को भी नहीं देखना है। पर दर्शन करना ही नहीं है, स्वदर्शन करना है, खुद को देखना है और बाबा को देखना है। बस मैं कितना धारण कर सकती हूँ, मैं कितना पुरुषार्थ कर सकती हूँ, केवल अपने को देखना है। किसी को देखना ही नहीं है, और दूसरी बात आप सभी को शेड्यूल जरूर मिला होगा, टाइम टेबल जरूर मिला होगा, उसको देख करके भी कोई व्यर्थ सोच ना करे फलाने आत्मा का क्लास नहीं है, इस भाई का क्लास होना चाहिए था, इस बहन का क्लास होना चाहिए था, क्यों नहीं, ये भी व्यर्थ सोच नहीं, क्योंकि आप सभी आए हैं बाबा के बुलाने पर, दीदी जी के बुलाने पर, है ना, बाबा के प्लान अनुसार आप सभी आए हैं। बाबा जरूर आप सभी का जो आप सभी की झोली जरूर भरेंगे। बाबा को पता है हर आत्मा को क्या देना चाहिए, तो इसीलिए जो भी यहाँ आत्मा आएगी, जो भी महारथी आएंगे, वो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा जो टच कराएंगे वही महावाक्य वो उच्चारेंगे और आप सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन तभी लाभ मिलेगा जब आपके मन के अंदर कोई व्यर्थ सोच नहीं, एकदम प्लेन बुद्धि होकर के जब आप बैठेंगे, बाबा आपके आत्मा को बहुत भरेंगे, बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। और तीसरे एम है, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मोबाइल, है ना। तो मोबाइल का मौन हो सकता है, मोबाइल का मौन हो सकता है, सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ मोड में रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा ध्यान भटकाने वाला है मोबाइल। बजता रहता है, किसका मैसेज आया है, इससे बात करें, उससे बात करें, नहीं, बिल्कुल नहीं, लोगों से भी बात नहीं करना है, मोबाइल से भी बात नहीं करना। मोबाइल से बात मना, हम ब्राउजिंग करना शुरू करते हैं, ये मैसेज व्हाट्सएप देखना शुरू कर, इसने क्या मैसेज भेजा, उसने क्या मैसेज भेजा, नहीं, वहां भी ध्यान न जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति वहां चला जाता है। इसीलिए मोबाइल जितना, अगर कारोबार है तो जरूर करें, लेकिन जब इस हॉल के अंदर आएंगे अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे, क्योंकि जब अच्छी तरह योग चल रहा होता है, किसी का ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, किसी का कुछ मैसेज आ रहा है, किसी का कुछ बज रहा है, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान सभी का भटक जाता है। तो आप ध्यान अगर किसी का भटकाते हैं तो आप पर बोझ जरूर चढ़ता है, इसीलिए मोबाइल स्विच ऑफ करके आप 3 दिन रहेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव आप सबको जरूर होगा। तो इस रीति से मौन धारण करके अपने से और बाबा से बात करते हुए अखंड भट्टी अगर हम करेंगे, तो जैसे आत्मा का सर्विसिंग हो जाता है, जैसे गाड़ियों को हम साल में एक बार सर्विसिंग पे छोड़ते हैं, गैराज पे छोड़ते हैं, ताकि वो पूरा ओवरऑलिंग हो जाए, पूरा कुछ अगर कुछ किचड़ा भरा है कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ रिप्लेस हो करके पूरी तरह नया हो करके वो गाड़ी हमें मिलता है। ऐसे ही आप सभी आए हैं अपना सर्विसिंग कराने के लिए, आत्मा की सर्विसिंग होगी, लेकिन अगर हम पूरी तरह ध्यान से पूरी तरह हर एक क्लास सुनते हुए ऊंचे लक्ष्य लेकर के अगर हम करेंगे, तो जरूर बाबा बहुत कुछ आप सभी को मिलेगा, आप देगा, और ऐसा भट्टी आप ऐसे अनुभव करते करके जाएंगे जैसे एक यादगार भट्टी आप सभी के लिए हो जाए। तो इन शुभ भावनाओं के साथ, इन शुभ भावनाएं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी का ज्ञान सरोवर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन दीदी जी। हम सबको भट्टी का लक्ष्य मिला, क्या क्या मिला, दीदी ने बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स बताई, मौन के बारे में बताया, 3 टाइप का मौन, हाँ ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। दूसरा बताया कि जब हम क्लास में आते हैं तो नोटबुक लेके आए, हाँ, और फिर साथ साथ में स्थिति के बारे में भी बताया, एज ए स्टूडेंट लाइफ लाइफ बताई। तो जब हम आते हैं तो ऐसे भट्टी में खो जाएं जैसे मैं बाबा और बाहर दुनिया नहीं है। हाँ, दीदी ने साथ साथ ये भी बताया, भट्टी का लक्ष्य इंडिविजुअल हो सकता है लेकिन हमारी स्थिति हम कैसे बनाए। दीदी ने एक पॉइंट और बताया कि आने वाले समय की पूर्व तैयारी हम इस भट्टी में कर सकते हैं। तो ऐसे सुंदर लक्ष्य हमें देने के लिए एक बार फिर हम अपनी आदरणीय सुमन दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वागत सत्र में मैं अब निवेदन करूंगा हमारी आदरणीय बी के अरुणा दीदी जी का, वो हमें अपनी प्रेरणा सूत्र शब्दों से प्रदान करें। आदरणीय अरुणा दीदी, आप खम्मम वारंगल सेंटर के इंचार्ज हैं और पिछले लगभग 45 सालों से समर्पित होकर बाबा की अनमोल सेवाएं कर रहे हैं। साथ साथ आप मीडिया विंग और वुमेन विंग से भी जुड़े हुए हैं और वहां पे आप अपनी अनमोल सेवाएं देते हैं। तो मैं आदरणीय अरुणा दीदी से निवेदन करता हूं कि आप हमें, हम सभी को भट्टी के लिए प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय अरुणा दीदी जी।
ओम शांति। बाप दादा मरियो और दीदी जी, हमको भट्टी के लिए बहुत अच्छा मौका दिया। चार दिन एक एक पल सफल करने की है और बाबा ने हमको तो वीआईपी का प्रोग्राम छोड़ करके हमें ही बाबा ने वीवीआईपी बना के भट्टी में स्पेशली बुलाया है। तो इस मौके का आनंद लेना और नशे में रहना, हमें बाबा ने इस साल वीवीआईपी बना दिया और भट्टी में बुलाया हमें रिफ्रेश करने के लिए और झोली भरने के लिए और दुआएं देने के लिए। इसलिए बहुत नशे में रहना, और यह दीदी ने बहुत अच्छा चांस दिया है। तो यह तो ज्ञान सरोवर में कैसे अनुभव करना, सारा झूले ही झूले हैं, शांति का झूला और आनंद का झूला, प्रेम का झूला। तो झूले में ही झूलते रहना, बस चार दिन झूले से उतरना नहीं, बाबा की गोदी से उतरना नहीं, बस बाबा की गोदी में ही बैठे रहना। और स्टूडेंट लाइफ में रहना, बाबा ने आज बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करने के लिए बोला। बुद्धि में ज्ञान से भरना और उसका अनुभव भी करना, ज्ञान का अनुभव और शांति का झूला, प्रेम का झूला, हरेक शक्ति ज्ञान गुण का अनुभवों के साथ, अनुभवों का ही लेन देन करना। एक संगठन में क्या होता, कैसे परचिंतन करते, आज बाबा ने तो जर्मुई जगमुई बिल्कुल नहीं करना बोला। तो जर्मुई जगमुई या परचिंतन बुद्धि से पूरा निकाल देना। क्यों ऐसा बुद्धि भ्रमित हो जाते, ज्ञान का डेप्थ, ज्ञान का डेप्थ नहीं मालूम है। तो इसलिए ज्ञान रतन बुद्धि से भरपूर नहीं है, इसलिए व्यर्थ चिंतन रहता और पर चिंतन करते रहते। इसलिए बुद्धि में ज्ञान से भरपूर कर देना और झोली में पूरा ज्ञान से भरपूर कर लेना और बाबा के झूले में झूलते रहना। और यह चार दिन प्रयोगशाला में ही रहना, हर प्रकार की प्रयोग, कौन से साइलेंस की प्रयोग, साइलेंस ही साइंस का आधार है, इसलिए साइलेंस का प्रयोग करना, साइलेंस का आनंद लेना। कोई क्लास नहीं है तो इधर उधर देखते नहीं बैठना, साइलेंस का आनंद लेना, बस प्यार में ही, सागर में ही डूबे ही रहना। और चार दिन इतना अनुभव करना, बस सारा जीवन यादगार बन जाना। ऐसे बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने का अच्छा मौका मिला है। सिर्फ ज्ञान योग के सिवाय और कुछ भी सोचना नहीं। जो बुद्धि में भारीपन है, जो बुद्धि में व्यर्थ है या परचिंतन है या कुछ भी हो, तो भी पूरा स्थिति बनाकर, परिपक्व स्थिति बनाकर शांत चित होके, योगी माना शांत चित, शीतल काया, ऐसे पूरा अनुभव करते हुए बैठना, इधर उधर देखते हुए नहीं, तन और मन पूरा स्थिर करके टाइम पर पहुंचना, और यादों में अमृत वेला भी पूरा फायदा उठाना, शक्तिशाली याद में बैठना। और योग का लक्ष्य क्या है, भट्टी का लक्ष्य क्या है, पकना, पकना। क्या प्रयोगशाला में अनेक प्रकार की अनुभूतियां करना और शांत शीतलता का अनुभव करना, पूरा मौन का रस अनुभव करना, और मन का मौन, मुख का मौन, मन का हर्षित मुख और मन भी, मुख भी हर्षित मुख, ऐसा हर्षित योगी बन करके घूमते फिरते रहना। मगर कैसा समय, एक एक सेकंड सफल करना, चार दिन में पूरा अनुभवों से झोली भर लेना, और सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए बाबा से रूह रिहान करना। कैसे रूह रिहान करते, क्या रूह रिहान करना, सारा दिन रूह रिहान कर सकते हैं क्या, पति पत्नी क्या बातें करते, क्या करूं, क्या, ऐसा नहीं सोचते। बाबा के लिए भी कितना साजन, कितना सुंदर है, उससे बातें करते रहना, रस भर लेना, और सर्व संबंधों का रस इतना अनुभव करना, बस यादगार बन जाना। बाबा से सभी ज्ञान गुण शक्तियों का अनुभव करने का प्रयोगशाला में बैठना, ऐसा रूहानी साइंटिस्ट बनके बैठना, और टाइम पर पहुंचना, और टाइम ही पूरा भूल जाना, टाइम हो रहा है अभी जाने का समय हो गया, भूख लग रहा है, ऐसा संकल्प नहीं चलना, कुछ भी हो इधर उधर नहीं देखना, बस बाबा की याद में ही बैठना। क्लास चले या ना चले, देरी हुआ, कुछ भी हो, तो मन में बस बाबा की प्यार में ही खोए रहना, और बाबा प्यार का समुन्दर है, वतन से हम सभी का बाहे पसार के फूल बिछाते हुए हमें स्वागत कर रहे हैं। बाबा की दुआओं का हस्त मस्तक पर है, ऐसा तरह तरह की अनुभव करना, अनुभवों का ही लेन देन करना। क्या पिता पुत्र क्या बात करना, ऐसा नहीं सोचते, हमेशा बातें करते ही रहते, कुछ ना कुछ बातें ही करते ही रहते, ऐसे बाबा से बातें करते रहना, कुछ भी हो बातें करते रहना। बात नहीं करे तो संबंध का अनुभव नहीं होता, एक दिन बात नहीं करे तो फिर दूसरा दिन, हाँ क्या, कैसा है, हाँ अच्छा है, ठीक है, चार दिन बात नहीं करे तो फिर क्या बात करने का क्या रहता, बस अच्छा है, ओम शांति, ओम शांति, बस चार दिन के बाद कुछ भी नहीं रहता बुद्धि में, क्या बात करूं, अच्छा है ना, ठीक है, बस ठीक है, इतना ही रह जाता। इसलिए जितना बातें करते उतना संबंध और समीप संबंध का अनुभव होते, इसलिए अंदर ही अंदर दिल से बाबा से बातें करना, मन से सभी से मौन रखना, और हृदय बाबा को अर्पित कर देना, बुद्धि का अहम भाव पूरा समर्पित कर देके, मैंने किया, मैंने बैठा, मेरा पोजीशन क्या है, मैंने क्या क्या काम छोड़ करके बैठी हूँ, ये सब बोझ उतार के शांत होकर के भट्टी का लाभ लेना। अच्छा, हमको इतना अवसर दिया, दीदी को, बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू अरुणा दीदी जी। बहुत सुंदर अपनी शुभकामनाएं हमारे समक्ष रखने के लिए। आपने बताया कि इस भट्टी को हमें एज ए प्रयोगशाला, यू नो, प्रयोगशाला के रूप में यूज करना है, इसमें पकना है और हमें अनुभूति करनी है। इतने सुंदर विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे आदरणीय महेशचंद भाई जी को, वो अपने दो शब्दों में प्रेरणाएं हमें दें। महेशचंद भाई जी, आप उन बाबा के अनमोल रत्नों में से हैं जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली है। हाँ, आप बहुत ही छोटी आयु में, 21 वर्ष की आयु में आप बाबा के घर में सरेंडर हो गए। वर्तमान में आप जो गढ़वाल जोन है उत्तराखंड में, आप उसके डायरेक्टर हैं और करनाल सेवा केंद्र की भी आप सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, आप उसके इंचार्ज हैं। साथ साथ आप जो हमारा स्पोर्ट्स विंग है, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम लोगों को कुछ दिन पहले करनाल उत्तराखंड में जाने का सौभाग्य मिला, तो हमने देखा कि भाई साहब ने वहाँ पे कैसी अपनी सेवाएं विस्तार की हैं। इतना कठिन स्थान है पर वहाँ पे बाबा के इतने सुंदर सुंदर सेंटर हैं, सच में देखने पे ही वंडर लगता है। तो ऐसी महान विभूति आज हमारे समक्ष है। हम भाई साहब से अनुरोध करते हैं कि अपनी प्रेरणाएं हमारे समक्ष शॉर्ट रूप में रखें।
ओम शांति। परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, डायरेक्टर ज्ञान सरोवर माउंट आबू तथा ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारीज, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ज्ञान सरोवर, राजयोगिनी बी के अरुणा बहन जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका खम्मम आंध्र प्रदेश, राजयोगी बी के संजय भाई जी ज्ञान सरोवर तथा दुर्भ्रता बी के शैलेन्द्र भाई जी ज्ञान सरोवर तथा भट्टी में आई हुई सभी भाई बहने जो दूर दराज से यहां पर पधारे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिना भाग्य के कोई उपलब्धि नहीं होती है। मैं डॉक्टर निर्मला दीदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको उन्होंने द्वारा बुलाया गया तथा बाबा द्वारा। डॉक्टर निर्मला दीदी जी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी है। कहते हैं कि इत्र ही नहीं महका करते, कई बार शख्सियत ही खुशबू दे जाती है। हमारे दीदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जैसे पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसे हमारे दीदी जी भी ज्ञान की किरणों से और अपने मन के विचारों से के प्रकंपनों से राजयोग के द्वारा सभी में गुण और शक्तियां भर रहे हैं। दीदी जी के लिए मैं क्या कहूं, गांधी जी कहा करते थे कि मुझे कभी कोई कठिनाई आती है तो मैं गीता से ढूंढ लेता हूं। दीदी जी भी कोई भी बात आती है उसका हल मुरली से ढूंढ लेते हैं और सभी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्दी कर देते हैं। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है तो दीदी जी 24 घंटे ही इस संसार को पवित्र करते जा रहे हैं। गंगा जमुना नदियां तो केवल भारत में बहती हैं, परंतु हमारे दीदी जी ज्ञान नदी बनकर सारे विश्व में बह रहे हैं। हमने सुना था कि भक्तों में शिरोमणि नारद भक्त है, जिसको जो भगवान को सबसे ज्यादा याद करता है। परंतु भगवान किसको याद करता है, कहते हैं हनुमान को। तो हमारे दीदी जी को भगवान याद करता है, इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा। दीदी जी के लिए दो लाइनें दे रहा हूं। ओ चांद तू नाराज ना हो, ओ चांद तू नाराज ना हो, हमने अनेकों चांद देखे हैं, तुम्हें तो फिर भी दाग है, तुम्हें तो फिर भी दाग है, हमने बेदाग देखे हैं, हमने बेदाग देखे हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहां पहुंचे हैं, शायद आप अभी भी मूल्यांकन नहीं कर रहे। दीदी जी स्टेज पर बैठे भी आपको उन प्रकंपनों से प्रभावित कर रहे हैं, जो लोग संसार के किसी कोने पर भी नहीं ले सकते। केवल ये ज्ञान सरोवर का जो प्रांगण है, इसमें ये खूबी है कि जो भी इस प्रांगण में आता है वो पवित्र होकर जाता है। हमने सुना था ज्ञान मानसरोवर में परियां बन जाते हैं, परंतु ज्ञान मानसरोवर में तो कोई परी बनता नहीं देखा, परंतु इस ज्ञान सरोवर में आकर जरूर परियां बन जाती हैं। आपको योग भट्टी में जो सुमन दीदी जी द्वारा पैमाना दिया है, उस फ्रेम में आपने फिट रहना है। यदि तीन दिन आप अपने ऊपर कुछ मेहनत कर लेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जीवन में सुंदर घड़ियां कभी कभी आती हैं, जिन पर सौभाग्य समय हस्ताक्षर करता है। ये जीवन की वो सुंदर घड़ियां आपको मिली हैं, जिनका एक एक सेकंड आपने जो पैमाना दिया उसमें बिताना है, क्योंकि जितना आप अपने पर अंकुश रख लोगे तीन दिन, जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं भट्टी में, जिन अवगुणों को, जिन कुसंस्कारों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको छोड़ने का आपको यहां बल मिल जाएगा। क्योंकि हमारे वरिष्ठ भाई बहने आपको ऐसे गहराई देंगे ज्ञान की, जो आज तक आपने नहीं सुनी। ज्ञान में हम चल रहे हैं सभी, पर ज्ञान हमारे अंदर कितना चल रहा है ये इस भट्टी में पता चलेगा। ज्ञान में चलना आसान है, पर ज्ञान हमारे अंदर चल जाए ये कठिनाई है, उसके लिए मेहनत है। क्योंकि जब आप यहां भट्टी से होकर जाएंगे अपने स्थानों पर, लोग आप में परिवर्तन देखें, घर वाले भी कहें कि अब की बार तो माउंट आबू से होकर आए, बहुत परिवर्तन है, तो हमने अपने उन कुसंस्कारों को जो हमें अब तक प्रभावित कर रहे हैं उनको पूरा तिलांजलि देकर जाना है, ताकि लोगों को लगे कि माउंट आबू में इतना परिवर्तन आ जाता है इंसान में, फिर वो भी तैयार होंगे। एक तो आप अपनी सेवा करेंगे, दूसरे आप उनकी भी सेवा होगी। क्योंकि भट्टी में कोई चीज डलती है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो आपका इनर स्वरूप बदलना चाहिए। जब यहां आप आए, कितनी कठिनाइयों से आए हैं, हमारे उत्तराखंड के भाई बहने आए, बहुत कठिनाइयां आई उनको, 50 घंटे लगे आने में, पहाड़ गिर गया, कितनी कठिनाई आई, परंतु आपका इनर लक्ष्य था और बाबा की मदद थी आपको, आपने बाबा की मदद को भी अनुभव किया और आप यहां पहुंच गए। अब आपने लाभ लेना है अपने जीवन में परिवर्तन करने का। तो आप भाई बहने यहां पधारे, आपके लिए भी दो लाइनें दे रहा हूं। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है। आज की हर खुशी सलाम करती है तुम्हें, आज की हर खुशी सलाम करती है तुम्हें। शिव बाबा ने वतन से आपके लिए पैगाम भेजा है, शिव बाबा ने वतन से आपके लिए पैगाम भेजा है। ओम शांति।
थैंक यू प्राथा जी, बहुत ही प्रेरणादायक शब्दों के लिए। हम सबको बहुत शॉर्ट समय में इतना मोटिवेट किया। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने बेटा जी का भी स्वागत करते हैं। स्वागत की इस प्रक्रिया में अब हम विधिवत दीप प्रज्वलन करके भट्टी का उद्घाटन करेंगे। तो मंचासीन हमारे सभी आदरणीय मरीज भाई बहन है और साथ में जो हमारी टीचर्स बहन है वो स्टेज पे आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ साथ मैं निवेदन करूंगा जो हमारे भाई बहने हैं वो अपने मोबाइल, सब खड़े होके अपने मोबाइल की जो टॉर्च है उससे हम वेव करेंगे। टीचर बहने कृपया स्टेज पे आ जाए।
दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए
शांति। जिस घड़ी का हमें इंतजार था अभी हम अपनी आदरणीय दीदी से, डॉक्टर नमला दीदी से आशीर्वचन सुनेंगे। महेश चंद भाई जी ने बहुत ही दीदी की तारीफ की, बताया एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर, एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर, ये सब तो दीदी का परिचय मिलता है। लेकिन हम जानते हैं, हम तो दीदी के क्लोज हैं, दीदी को हमने इतना क्लोजली देखा है, बाबा ने जो बोला है श्रीमत को कदम कदम पर फॉलो करने वाले। हाँ, भट्टियों में कई बार मैं बताता हूँ, दीदी बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे बोलते हैं समय के एक्यूरेट, श्रीमत पे एक्यूरेट। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, दीदी कई बार हार्ट पेसर का ऑपरेशन हुआ, दीदी 11 बजे पहुंचे और शाम को योग में आ गए। हाँ, आप देखेंगे अभी एक बार तालियां से हम अपनी दीदी का स्वागत करते हैं। अगेन अभी आप दीदी के क्लास सुनेंगे, 3 दिन मुरली सुनेंगे, तो आपको जैसे भ्राता जी बता रहे थे ना, उनके वाइब्रेशन, उनकी पवित्रता, ये सब आपको महसूस होगी। तो दीदी उन विभूतियों में से हैं, साकार में, साकार बाबा, साकार मुरली में उनकी तारीफ करता है, महिमा करता है, और अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त मूल्यों में उनको याद करता है। हाँ, जब ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी बाबा ने दी तो स्वयं उनके सर पे हाथ रखा। तो ऐसी महान विभूति आज हमारे समक्ष है और हम उनसे आशीर्वचन सुनेंगे। पर उससे पहले मैं अपनी सुमन दीदी से अनुरोध करूंगा कि जो भी भट्टी में भाई बहने आए हैं उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन हमारे दीदी के साथ करें।
ओम शांति। इस ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप है जो करनाल सेक्टर 7 असंग और उत्तराखंड से जो भाई बहने आए हैं, करीब 200 भाई बहने, सब खुद खड़े हो जाएंगे, जो करनाल सेक्टर 7 असंग और उत्तराखंड से जो भाई बहने आए हैं सब उठ खड़े हो जाएंगे। आप सभी का बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है, बैठे। उसके अलावा नेक्स्ट बड़ा ग्रुप है वारंगल, खम्मम और वैजाग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो भाई बहन आए हैं, आप सभी उठ खड़े होंगे। आपका भी बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है। और नगरोटा भगवान से जो भाई बहने आए हैं, नगरोटा से जो भाई बहने आए हैं, आप उठ खड़े हो जाएंगे। आपका भी स्वागत है बाबा के घर में, स्वागत, बैठे। गांधीनगर, गांधीनगर से जो भाई बहने आए हैं, नहीं पहुंचे शायद। अच्छा, इसके अलावा कोई है कहीं से जिनका नाम नहीं लिए क्या? हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से जो भाई बहन आए हैं, हनुमानगढ़ और उनके कनेक्शन में से जो भाई बहन आए हैं, सब उठ करेंगे। आपका भी स्वागत है, स्वागत है। यूपी कहा? बुलंदशहर। यूपी बुलंद शहर से जो भाई बहन आए हैं उठ खड़े होंगे, स्वागत है, बैठे। और भी कोई बाकी है? अभी हम आदरणीय निर्मला दीदी से सुनेंगे।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाई बहन तथा सभा में उपस्थित सभी तपस्या करने आने आए हुए भाई बहने, बाबा ने आपको ये अच्छा चांस दिया है, आप लक्ष्य रखना कि बाबा से हमने जो संबंध का अनुभव नहीं किया है उसको यहाँ करना है, क्योंकि नॉलेज तो बुद्धि में सहज है कि बाबा, माता पिता, बंधु, सखा, विद्या देने वाला, टीचर गुरु सब कुछ हमारा है, परंतु उसका अनुभव किया है माँ का बाप का टीचर का गुरु का साजन का बच्चे का मित्र का, नहीं किया है तो योग का प्रयोग करना। यहाँ योग का प्रयोग करने का अच्छा चांस है। अपने को अंतर्मुखी होकर देखना, मेरे में कौन से गुण की कमी है, कौन सा अवगुण है जो मुझे निकालना है, क्योंकि लक्ष्य सभी का है बाप समान बनना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा धर्म। तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने का समय थोड़ा है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो आप यहाँ आरंभ करेंगे तो जहाँ भी जाएंगे आपके लिए उसी लहर से पुरुषार्थ करने का सहज होगा, क्योंकि जहाँ जीना है, जहाँ तक जीना है, पढ़ना है, बाप को याद करना, और जो गाते रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दूसरे सब से इवन अपने देह से नष्टो मोहा होना है, और उसके लिए चेक करना है कि हमारा मोह किस में है, किसके हम आधारित है, क्या बाबा से ही हम सब सहारा लेते हैं या किसके ऊपर और आधारित है, क्यों अंत में हमारा पेपर मालूम है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यह हमारा पेपर होगा, ये पेपर में पास होने के लिए अभी से पूरा नष्ट मोहा बनना है, मेरा शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं, सब कुछ उनका है, चाहे वैभव है, चाहे बाल बच्चे हैं, चाहे माँ बाप है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे सेंटर है, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। तो चेक करके बाबा से शक्ति लेकर अपने आप में पूर्ण परिवर्तन करना है। जो आप अपने घर या सेवा स्थान पर जाओ तो सब कहे ये तो कोई फरिश्ता बनकर आया है। तो यहां से फरिश्ते की ड्रेस लेके जाना, चलते फिरते अपने को फरिश्ता देखना और सामने वाले को भी फरिश्ता देखना। तो ये अभ्यास करके जाना, और साथ में अभी तक कोरोना गया नहीं है ये ध्यान में रखना, जो भी मास्क पहना है वो नाक बंद करे, और जो नहीं लाए हैं अर्जुन भाई जो कि सेवाधारियों को देखता है उनसे मास्क ले लें, और दो व्यक्ति के बीच में एक सीट खाली रखना है, और जो छोटे बच्चे लाए हैं कृपया ऊपर गैलरी में बैठना। वैसे तो बच्चों को लाना नहीं चाहिए, बच्चे क्या योग करेंगे, न खुद योग करेंगे, न माँ बाप को योग करने देंगे, न औरों को करने देंगे, तो इसलिए ऊपर गैलरी में बैठना। और बाबा की याद द्वारा, मौन द्वारा अपने में पूर्ण शक्ति भर के जाओ, ऐसी ही मेरी शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत सुंदर मंत्र दिया कि मेरा सेवावा उसके सिवाय कुछ नहीं, और बहुत सुंदर गिफ्ट दी, जब हम यहाँ से जाएंगे तो फरिश्ता, स्वयं फरिश्ता बन के जाएंगे और दूसरों को फरिश्ता देखेंगे। इतने सुंदर आशीर्वचनों के लिए हम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय बीके संजय भाई जी से कि भट्टी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हमारे से साझा करें। संजय भाई जी, आप बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं, आप स्पार्क के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, साथ साथ आप जो हमारा रोटी डिपार्टमेंट है आप उसमें भी सेवाएं देते हैं, और आप ज्ञान सरोवर में जो भट्टियां होती हैं उसकी व्यवस्था में भी पूर्ण सहयोग देते हैं। तो मैं आदरणीय संजय भाई जी से अनुरोध करूंगा कि भट्टी से संबंधित सूचनाओं को हमारे साथ साझा करें। आदरणीय संजय भाई जी।
ओम शांति। एक बहुत सुंदर लक्ष्य के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं, और अगले चार दिनों तक आपकी सुंदर तपस्या होनी है। आज उसका एक उद्घाटन भी हुआ और आपको लक्ष्य भी मिला, सबकी प्रेरणाएं भी मिली, आदरणीय निर्मला दीदी जी की उनके आशीर्वचन भी हमें मिले। अगले चार दिनों तक आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो हमारी साधना को बढ़ाएगा और हमारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाएगा। अब जो संसार की स्थिति बन रही है उसमें अब इसकी ही जरूरत है कि हम अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से समेट कर साधना में लग जाएं। समय तो हमने बहुत गंवा लिया, अब गंवाने के लिए हमारे पास समय बचा नहीं है, तो एक समझदार योगी के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि अब बचे हुए समय को वो साधना में बिताए। ज्ञान भी हमारे पास बहुत हो गया, अब ज्ञान की भी इतनी जरूरत नहीं है हमको, बहुत सारे माध्यम हो गए हैं ज्ञान के, पहले तो ये सब थे नहीं, अब बहुत सारे माध्यम, YouTube, Facebook, बहुत कुछ हमारे पास हो गया है। अब जरूरत है बैठने की, अपने आप से बातें करने की और साधना करने की, और इसी लक्ष्य से आप सब यहाँ आए हैं। यूजुअली अब तक ज्ञान सरोवर में भट्टियां होती नहीं रही हैं, भट्टियों का कार्यक्रम शांतिवन में ही चलता रहा है। आप सबका सौभाग्य है और कोरोना को थैंक्स है कि कोरोना के कारण हम सब ज्ञान सरोवर में भट्टी करने का अवसर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रकृति का भी पूर्ण सहयोग है। यहां पर जो प्रकृति है वो भी हमारी साधना के लिए सहायक है। तो हम सब अगले चार दिनों तक बहुत सुंदर योग तपस्या करेंगे। जो कुछ पीछे छोड़ आए हैं उसको चार दिनों के लिए पूरी तरह मन से भी छोड़ देंगे और शांत एकाग्र मन से हम साधना करेंगे। उसके लिए एक बहुत सुंदर दिनचर्या आपकी बनाई गई है और दिनचर्या बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपकी दिनचर्या बहुत हेक्टिक भी ना हो, बहुत टाइट भी ना हो, ताकि आप यहाँ पर आए हैं तो बाबा के घर में, यहाँ के कण कण में जो वाइब्रेशंस भरे हुए हैं, पवित्रता के, सुख और शांति के, परिवर्तन की जो शक्ति इसमें भरी हुई है उसको भी आप महसूस कर पाए, सेंस कर पाए। तो थोड़ा समय आपके पास खाली हो, जब आप शांत एकांत में बैठ करके यहाँ की शक्ति को महसूस करें, वातावरण को सेंस करें, तो ये ध्यान रखते हुए दिनचर्या तैयार की गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी दिनचर्या, आप जहाँ भी ठहरे हैं, हर भवन के एंट्रेंस में लगाई गई है, तो आप सबने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। संक्षेप में मैं उसको एक बार ब्रीफ करना चाहूँगा। आप सबकी उठने का जो कार्यक्रम रहेगा वो 3 बजे, वैसे तो यज्ञ के नियमानुसार 3:30 बजे उठने का गीत बजता है, लेकिन आप सब 3 बजे उठेंगे, मुँह हाथ धुलाई करके, बाबा को गुड मॉर्निंग करके, और फिर 3:30 बजे आप सब यहाँ पर आएंगे। आप सबको ध्यान रहे कि आपके जो भी कार्यक्रम चलेंगे वो सब इसी हॉल में चलेंगे। अगर कोई परिवर्तन बीच में होता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। 3:30 बजे आप सब आएंगे, 3:30 से 4:45 बजे तक सबका सामूहिक योग अमृत वेले का यहाँ ही होगा। और हर रोज कोई न कोई एक भाई या बहन हमारे बीच आकर के हमें बहुत सुंदर योग कराएंगे। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के 6 से 6:30 बजे तक फिर से आप यहाँ आएंगे और आपको थोड़ी एक्सरसाइज कराई जाएगी। चूंकि सारा दिन हमको बैठना है तो बैठ बैठ कर भी कहीं ना कहीं शरीर हमारा अकड़ जाता है, तो हमारे साउंड डिपार्टमेंट के सुरेश भाई बहुत सुंदर म्यूजिकल एक्सरसाइज कराते हैं गीतों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा। आपको भी बहुत इंटरटेनिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। कोई इस तरह के एक्सरसाइज नहीं कराए जाएंगे कि आप कर ना पाए। बहुत हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो बहुत आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ आप कर पाएंगे, तो आप सब वो आधा घंटा जरूर करें, ताकि सारा दिन आप चुस्ती के साथ रिफ्रेश होकर के बाबा की याद में बैठ सकें। फिर 6:30 से 7:00 बजे तक सबका यहाँ फिर से मुरली क्लास के पहले का आधा घंटा योग चलेगा। फिर 7 से 8 बजे तक मुरली क्लास होंगी और मुरली क्लास के बाद 15 मिनट मुरली को रिवाइज कराई जाएगी। मुरली सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु उसको रिवाइज करते रहना, ताकि वो याद रहे। याद रहेंगी बातें तो जीवन में उतरेंगी, जो बात भूल गई वो फिर जीवन में धारणा में आती नहीं है। तो ये एक सीख हमारे लिए होगी कि हमें घर में रहते भी मुरली को सुनकर डायरी बंद करके रख नहीं देना है, उसे बीच बीच में रिवाइज भी करना है। तो 15 मिनट के लिए मुरली रिवीजन होगा, उसके बाद आप सब नाश्ते पर जाएंगे। पुनः आप लोग 9:30 बजे यहाँ आएंगे, 9:30 से 10:00 बजे तक सामूहिक योग चलेगा, गाइडेड मेडिटेशन। आप जानते हैं हमारे सामने कोई न कोई एक अनुभवी योगी भाई बहन होंगे जो हमें मार्गदर्शन के द्वारा योग कराएंगे। फिर 10:00 से 11:15 बजे तक एक क्लास होगी, 11:30 से 11:30 बजे तक एक छोटा सा ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर से 11:30 से 12:30-1 बजे तक एक क्लास होगी और 1 बजे से फिर हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। 1 से 4 बजे तक लंच और रेस्ट रहेगा। 3 घंटा काफी समय होता है हमारे पास, हम भोजन के बाद थोड़ा विश्राम भी कर पाएंगे और बचे हुए समय में हम आत्मचिंतन करें, कुछ स्व अध्ययन करें, सेल्फ स्टडी करें। यहाँ का जो समय है वो पूरी तरह से आप यूटिलाइज करें। चाय वगैरह पी करके फिर से 4:30 बजे आप यहाँ आएंगे। 4:30 से 5 बजे तक फिर से गाइडेड मेडिटेशन, फिर 5 से 6:15 बजे तक एक क्लास होगी, 6:30 से 6:30 बजे तक एक छोटा सा बायो ब्रेक होगा और उसके बाद 6:30 से 7:30 बजे तक नमः शाम का योग। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ये 2 योग के समय बहुत महत्वपूर्ण है, एक अमृत वेले का समय और एक नमः शाम का समय। ये दोनों, नमः शाम का योग भी अमृत वेले के समान ही पावरफुल होता है। यहाँ का वातावरण उस समय बहुत सुंदर और बहुत अलौकिक होता है। आप सब ये 2 समय जितना चाहें अपने मन को शक्तियों से भर सकते हैं, तो ये 2 खास समय बिल्कुल भी आप मिस ना करें। समय से पहले आएं और इसका आनंद लें। फिर 7:30 से 8:15 बजे तक फिर से एक क्लास होगा और उसके बाद 8:15 बजे आप सब डिनर के लिए जाएंगे। डिनर करने के बाद 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक बाबा के कमरे में आप लोग गुड नाइट मेडिटेशन करेंगे। फिर आपको यहाँ नहीं आना है, हमारे कॉम्प्लेक्स में कई छोटे छोटे बाबा के कमरे बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाएंगे और बाबा को गुड नाइट करेंगे और फिर आप लोग विश्राम के लिए जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप सुबह 3 बजे उठेंगे, फिर रात को 10 बजे सोना है, लंबा गैप हो जाता है, तो विश्राम पर्याप्त होना बहुत जरूरी है। अगर पर्याप्त विश्राम नहीं मिलेगा तो भी योग में बाधक होता है। तो मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, खास बारिश के दिनों में यहाँ का मौसम बहुत सुंदर, बहुत ही अलौकिक हो जाता है, हमें घूमना फिरना उसमें अच्छा लगता है। परंतु आप घूमें जरूर, पर 10 बजे से पहले पहले यदि आप सो जाते हैं तो सुबह आप सहज रीति उठ पाएंगे, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही कुछ एक सूचनाएं भी हैं, इन पर भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपके सारे कार्यक्रम यहाँ ही चलेंगे, बारिश का समय है तो आपकी एक्सरसाइज भी यहीं कराई जाएगी। सुमन दीदी ने एक बहुत सुंदर हम लोगों को लक्ष्य दिया है, साइलेंस की शक्ति तब जमा होती है जब हम मौन में रहते हैं। तो अगले 3-4 दिनों तक आज आपको जितना बात करना था आपने कर लिया अभी से लेकर, और जब तक आपकी भट्टी समाप्त ना हो जाए कंप्लीट मौन कर पाएंगे। हाथ खड़ा करें जो कंप्लीट मौन में रहेंगे। अगर कुछ आवश्यक बात आपको करनी हो, ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है, तो बहुत सॉफ्ट वॉइस में, विस्परिंग वॉइस में, जैसे कि बाप दादा बोलते हैं, आप 2 शब्दों में कर सकते हैं, परंतु ना करें तो अच्छा। ये पुरुषार्थ रुचि का विषय है, जितनी रुचि से और ऑनेस्टी से करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो मुख का मौन जरूर हमें रखना है। यहाँ कॉम्प्लेक्स में आपके साथ साथ 400 भाई बहने और भी हैं, निवासी हैं, सेवाधारी हैं, वो तो मौन में नहीं रहेंगे क्योंकि उनके लिए तो रोज की दिनचर्या है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से पुरुषार्थ करता है, उन्हें कारोबार को संभालना है, उनको देख करके हमको वाचा में नहीं आना है। उनको अपना काम करने दीजिए, हमको अपना करना है। तो मुख का मौन, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है मोबाइल का मौन। जब से आपने मोबाइल खरीदा होगा शायद ही स्विच ऑफ किया होगा, वो भी सोचता होगा पता नहीं किसके हाथ में पड़ गए, हमारा मालिक तो थोड़ा भी हमको रेस्ट ही नहीं देता है। तो थोड़ा सा आप चार दिनों के लिए उसको रेस्ट दे दें। मोबाइल क्लास में लेकर के ना आए तो सबसे अच्छा। सुमन दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मोबाइल बीच में बजता है, ये भी एक बोझ है। हमें क्या लगता है, किसी की हत्या कर देना, किसी का धन छीन लेना, किसी को बड़ा दुख दे देना, यही पाप है। ऐसा नहीं है, हम सारे दिन की दिनचर्या में छोटे छोटे पाप भी बहुत करते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। और ये छोटे छोटे पाप जिनसे बहुत बड़ा विकर्म तो नहीं बनता, लेकिन हमारी ऊर्जा बहुत नष्ट होती है। हम सब 500-700 लोग योग में बैठे हैं और अचानक आपका मोबाइल बज जाता है और 500-700 लोगों का ध्यान टूट कर बाबा से हमारे ऊपर आ जाता है, मोबाइल पर चला जाता है। ये पाप है या पुण्य है, क्या है ये? एक साथ 700-800 लोगों का ध्यान भगवान से तोड़ने के हम निमित्त बन जाते हैं। सुनने में सहज लगता है, सामान्य लगता है, ये भी एक बोझ है आत्मा के ऊपर। तो अगर आप ले करके ना आए तो अच्छा, और अगर लाए भी तो उसे कंप्लीटली स्विच ऑफ करके रखें। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा योग लगेगा।